दूसरा सैमुअल बाब 19। योआब को इत्तला दी गई, बादशाह रोते रोते अबीसलोम का मातम कर रहा है। जब फौजियों को खबर मिली कि बादशाह अपने बेटे का मातम कर रहा है, तो फतह पाने पर उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। हर तरफ मातम और गम का समा था। उस दिन दाऊद के आदमी चोरी चोरी शहर में घुस आए, ऐसे लोगों की तरह जो मैदान जंग से फरार होने पर शर्माते हुए चुपके से शहर में आ जाते हैं। बादशाह अभी कमरे में बैठा था, अपने मुंह को ढांप कर वो चीखता चिल्लाता रहा, हाय मेरे बेटे अबीसलोम, हाय अबीसलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब उसके पास जाकर उसे समझाने लगा, आज आपके खादिमों ने न सिर्फ आपकी जान बचाई है, बल्कि आपके बेटों, बेटियों, बीवियों और दास्ताओं की जान भी। तो भी आपने उनका मुंह काला कर दिया। जो आपसे नफरत करते हैं उनसे आप मोहब्बत रखते हैं, जबकि जो आपसे प्यार करते हैं उनसे आप नफरत करते हैं। आज आपने साफ जाहिर कर दिया है कि आपके कमांडर और दस्ते आपकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते। हाँ, आज मैंने जान लिया है कि अगर अबीसलोम जिंदा होता तो आप खुश होते, खा हम बाकी तमाम लोग हलाक क्यों ना हो जाते। अब उठकर बाहर जाएं और अपने खादिमों की हौसला अफजाई करें। रब की कसम, अगर आप बाहर ना निकलेंगे तो रात तक एक भी आपके साथ नहीं रहेगा। फिर आप पर ऐसी मुसीबत आएगी जो आपकी जवानी से लेकर आज तक आप पर नहीं आई है। तब दाऊद उठा और शहर के दरवाजे के पास उतर आया। जब फौजियों को बताया गया कि बादशाह शहर के दरवाजे में बैठा है, तो वो सब उसके सामने जमा हुए। इतने में इसराइली अपने घर भाग गए थे। इसराइल के तमाम कबीलों में लोग आपस में बहस मुबाहसा करने लगे, दाऊद बादशाह ने हमें हमारे दुश्मनों से बचाया और उसी ने हमें फिलिस्तियों के हाथ से आज़ाद कर दिया, लेकिन अबीसलोम की वजह से वो मुल्क से हिजरत कर गया है। अब जब अबीसलोम, जिसे हमने मसा करके बादशाह बनाया था, मर गया है, तो आप बादशाह को वापस लाने से क्यों झिझकते हैं? दाऊद ने सदोक और इब्यातर इमामों की मार्फत यहूदा के बुजुर्गों को इत्तला दी। ये बात मुझ तक पहुँच गई है कि तमाम इसराइल अपने बादशाह का इस्तकबाल करके उसे महल में वापस लाना चाहता है। तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं? क्या आप मुझे वापस लाने में सबसे आखिर में आना चाहते हैं? आप मेरे भाई, मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, तो फिर आप बादशाह को वापस लाने में आखिर में क्यों आ रहे हैं? और अबीसलोम के कमांडर अमासा को दोनों इमामों ने दाऊद का ये पैगाम पहुंचाया, सुने आप मेरे भतीजे हैं, इसलिए अब से आप ही यो आपकी जगह मेरी फौज के कमांडर होंगे। अल्लाह मुझे सख्त सजा दे अगर मैं अपना यह वादा पूरा ना करूं। इस तरह दाऊद यहूदा के तमाम दिलों को जीत सका और सब के सब उसके पीछे लग गए। उन्होंने उसे पैगाम भेजा, वापस आएं आप भी और आपके तमाम लोग भी। तब दाऊद यरूशलम वापस चलने लगा। जब वो दरिया यर्दन तक पहुंचा तो यहूदा के लोग जिलजाल में आए ताकि उससे मिलें और उसे दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचाएं। बिन्यामीनी शहर बहुरेम का सिमी बिन जीरा भी भागकर यहूदा के आदमियों के साथ दाऊद से मिलने आया। बिन्यामीन के कबीले के 1000 आदमी उसके साथ थे। साउल का पुराना नौकर ज़ैबा भी अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत उनमें शामिल था। बादशाह के यर्दन के किनारे तक पहुंचने से पहले वो जल्दी से दरिया को अबूर करके उसके पास आए ताकि बादशाह के घराने को दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचाएं और हर तरह से बादशाह को खुश रखें। दाऊद दरिया को पार करने को था कि सिमी ओंधे मुंह उसके सामने गिर गया। उसने इल्तमास की, मेरे आका मुझे माफ़ करें, जो ज्यादती मैंने उस दिन आपसे की जब आपको यरूशलेम छोड़ना पड़ा वो याद ना करें। बराह करम ये बात अपने जहन से निकाल दें। मैंने जान लिया है कि मुझसे बड़ा जुर्म सरजद हुआ है, इसलिए आज मैं यूसुफ के घराने के तमाम अफराद से पहले ही अपने आका और बादशाह के हुजूर आ गया हूँ। अबिशै बिन जरूयाह बोला, सिमी सजाए मौत के लायक है, उसने रब के मसह किए हुए बादशाह पर लानत की है। लेकिन दाऊद ने उसे डांटा, मेरा आप और आपके भाई योआब के साथ क्या वास्ता? ऐसी बातों से आप इस दिन मेरे मुखालिफ बन गए। आज तो इसराइल में किसी को सजाए मौत देने का नहीं बल्कि खुशी का दिन है। देखें, इस दिन मैं दोबारा इसराइल का बादशाह बन गया हूँ। फिर बादशाह सिमई से मुखातब हुआ, रब की कसम आप नहीं मरेंगे। साउल का पोता मफीबोसत भी बादशाह से मिलने आया। उस दिन से जब दाऊद को यरूशलेम को छोड़ना पड़ा आज तक जब वो सलामती से वापस पहुंचा, मफीबोसत मातम की हालत में रहा था। न उसने अपने पांव न अपने कपड़े धोए थे, न अपनी मोछों की काट छांट की थी। जब वो बादशाह से मिलने के लिए यरूशलेम से निकला तो बादशाह ने उससे सवाल किया, मफीबोसत आप मेरे साथ क्यों नहीं गए थे? उसने जवाब दिया, मेरे आका और बादशाह मैं जाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरा नौकर ज़ैबा मुझे धोखा देकर अकेला ही चला गया। मैंने तो उसे बताया था, मेरे गधे पर जीन कसो ताकि मैं बादशाह के साथ रवाना हो सकूं, और मेरा जाने का कोई और वसीला था ही नहीं क्योंकि मैं दोनों टांगों से माजूर हूं। ज़ैबा ने मुझ पर तोहमत लगाई है, लेकिन मेरे आका और बादशाह अल्लाह के फरिश्ते जैसे हैं, मेरे साथ वही कुछ करें जो आपको मुनासिब लगे। मेरे दादा के पूरे घराने को आप हलाक कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने मेरी इज्जत करके उन मेहमानों में शामिल कर लिया जो रोज़ाना आपकी मेज़ पर खाना खाते हैं। चुनांचे मेरा क्या हक है कि मैं बादशाह से मज़ीद अपील करूं? बादशाह बोला, अब बस करें, मैंने फैसला कर लिया है कि आपकी ज़मीनें आप और ज़ैबा में बराबर तकसीम की जाएं। मफीबोसत ने जवाब दिया, वो सब कुछ ले ले, मेरे लिए यही काफ़ी है कि आज मेरे आका और बादशाह सलामती से अपने महल में वापस आ पहुँचे हैं। बर्जली जिलआदी राजलईम से आया था ताकि बादशाह के साथ दरिया यर्दन को पार करके उसे रुखसत करे। बर्जली 80 साल का था। मोहनाइम में रहते वक्त उसी ने दाऊद की मेहमान नवाजी की थी क्योंकि वो बहुत अमीर था। अब दाऊद ने बर्जली को दावत दी, मेरे साथ यरूशलेम जाकर वहाँ रहें, मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूँगा। लेकिन बर्जली ने इनकार किया, मेरी ज़िंदगी के थोड़े दिन बाकी हैं, मैं क्यों यरूशलेम में जा बसूँ? मेरी उम्र 80 साल है, न मैं अच्छी और बुरी चीज़ों में इम्तियाज कर सकता, न मुझे खाने पीने की चीज़ों का मज़ा आता है। गीत गाने वालों की आवाज़ें भी मुझसे सुनी नहीं जाती। नहीं मेरे आका और बादशाह, अगर आपके साथ जाऊं तो आपके लिए सिर्फ बोझ का बास होऊंगा। इसकी ज़रूरत नहीं कि आप मुझे इस किस्म का मुआवजा दें, मैं बस आपके साथ दरिया यर्दन को पार करूंगा और फिर अगर इजाज़त हो तो वापस चला जाऊंगा। मैं अपने ही शहर में मरना चाहता हूं जहां मेरे माँ बाप की कब्र है, लेकिन मेरा बेटा किमहाम आपकी खिदमत में हाजिर है, वो आपके साथ चला जाए तो आप उसके लिए वो कुछ करें जो आपको मुनासिब लगे। दाऊद ने जवाब दिया, ठीक है, किमहाम मेरे साथ जाए और जो कुछ भी आप चाहेंगे मैं उसके लिए करूँगा। अगर कोई काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो मैं हाजिर हूँ। फिर दाऊद ने अपने साथियों समेत दरिया को अबूर किया। बर्जली को बोसा देकर उसने उसे बरकत दी। बर्जली अपने शहर वापस चल पड़ा, جبکہ داؤد جلجال کی طرف بڑھ گیا، کمہام بھی ساتھ گیا۔ اس کے علاوہ یہودا کے سب اور اسرائیل کے آدھے لوگ اس کے ساتھ چلے۔ راستے میں اسرائیل کے مرد بادشاہ کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے، ہمارے بھائیوں یہودا کے لوگوں نے آپ کو آپ کے گھرانے اور فوجیوں سمیت چوری چوری کیوں دریائے یردن کے مغربی کنارے تک پہنچایا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہودا کے مردوں نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کو یہ دیکھ کر غصہ کیوں آ گیا ہے؟ نہ ہم نے بادشاہ کا کھانا کھایا، نہ اس سے کوئی تحفہ پایا ہے۔ تو بھی اسرائیل کے مردوں نے اعتراض کیا، ہمارے 10 قبیلے ہیں، اس لیے ہمارا بادشاہ کی خدمت کرنے کا 10 گنا زیادہ حق ہے۔ تو بھی پھر آپ ہمیں حقیر کیوں جانتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے اپنے بادشاہ کو واپس لانے کی بات کی تھی۔ یوں بحث مباحثہ جاری رہا، لیکن یہودا کے مردوں کی باتیں زیادہ سخت تھیں۔